بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتا متروں، آج کے کارکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 154 سے 157 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری پرہیزگار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت هم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور نسندے ہم تھوڑے بھے، تھوڑی بھوک، کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے، اور ہے پیغمبر، آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے، اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں۔
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शार्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज मंगलवार है, मेहर की 26, रबीउल अव्वल की 21 और अक्टूबर की 18 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कुरानी किस्से और अंतिम कार्यक्रम होगा जैविक युद्ध का खतरा। श्रोताओं, 30 अक्टूबर से हमारी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। ये फ्रीक्वेंसी होगी 31 मेगाहर्ट्ज़ और 9,620 किलोहर्ट्ज़। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। तेहरान का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाना दुनिया में कहीं भी सहन नहीं किया जाता है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि यूरोप को बाघ और बाकी दुनिया को जंगल बताना साम्राज्यवादी सोच को दर्शाता है। बिल्गिस बानो सामूहिक रेप और हत्या मामले में 11 मुजरिमों को रिहा करने के फैसले को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले फैसले को पलट दिया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि दंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना दुनिया में कहीं भी सहन नहीं किया जाता। दंगों और हंगामों के मामले में ईरान पर यूरोपीय संघ की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि यूरोपीय संघ ने आज अनुमान की बड़ी गलती करते हुए और गलत जानकारियों के आधार पर काम करते हुए एक बार फिर ईरानियों के खिलाफ अपना घिसा पिटा हथियार इस्तेमाल किया है और पाबंदियां लगाई हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में कहीं भी दंगों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने को सहन नहीं किया जाता। यूरोपीय संघ की मंत्रिय परिषद ने ईरान की 11 हस्तियों और 4 संस्थाओं पर, जिनमें मोरालिटी पुलिस भी शामिल है, पाबंदी लगाई। उन पर मानवाधिकारों के हनन का झूठा आरोप लगाया है। इससे पहले विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाया ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेफ बोरेल से टेलीफोन पर बातचीत में कहा था कि इस्लामी रिपब्लिक ईरान को व्यापक जनसमर्थन हासिल है और ये व्यवस्था लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई है। यहां रंगीन क्रांतियों से सरकारें नहीं बनती। ईरान इलाके में ठोस शांति व सुरक्षा का स्तंभ है।
रूस को ईरानी ड्रोन विमान बेचे जाने और यूक्रेन के खिलाफ इन ड्रोन विमानों के व्यापक इस्तेमाल की अफवाह फैलाने वाले अमरीका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अब बयान दिया है कि वो हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि यूक्रेन पर होने वाले हमलों में ईरान निर्मित ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पाटिल ने दावा किया था कि रूस को ईरानी ड्रोन विमानों की बिक्री सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 का उल्लंघन है, और साथ ही कहा था कि हम ये मानते हैं कि ईरानी ड्रोन विमानों को रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कारिन जॉन ने दावा ठोक दिया कि वॉशिंगटन के पास ठोस सबूत मौजूद हैं कि ईरानी विमानों को यूक्रेन में इस्तेमाल किया गया है और ईरान रूस को और भी हथियार बेचने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा था कि ईरान और रूस के बीच हथियारों की खरीद फरोख्त की वजह से पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी रहेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका का दावा दोहराते हुए कहा कि यूक्रेन के आम इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों में ईरानी ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीकी मैगजीन पॉलिटिको ने भी एक अमरीकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट छापी थी कि अमरीका यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार रूस को बेचने के मामले में ईरान पर पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहा है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख के बयान की कड़ी आलोचना की है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा था कि यूरोप एक चमन की तरह है जबकि बाकी दुनिया एक जंगल है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी चागी ने बोरेल के इस बयान की निंदा में किए गए ट्वीट में लिखा, चमन और जंगल का इस्तेमाल साम्राज्यवादी सोच को दिखाता है और इसका अर्थ यह है कि पश्चिम को दूसरों पर हमला करने और कब्जा करने का अधिकार है। कनानी चाफी का कहना था कि अब समय बदल गया है और एकाधिकार समाप्त हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूरोपीय देशों को अब इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि समय बदल रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पतन के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। कनानी चाफी का कहना था कि बोरेल के इस बयान पर दुनिया भर में काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, यहां तक कि खुद यूरोप में भी इस पर लोगों ने आश्चर्य जताया है। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख ने गुरुवार को एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि यूरोप एक बाग है जहां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आजादी का बेहतरीन संगम है, लेकिन बाकी दुनिया ऐसी नहीं है बल्कि दुनिया के अधिकांश हिस्से जंगल की तरह है।
मोदी सरकार ने गुजरात 2002 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिल्किस बानो सामूहिक रेप और हत्या मामले में 11 सजायाफ्ता मुजरिमों को रिहा करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के करीबी अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय गृह मंत्रालय का अनुमोदन पत्र कानूनी साइट द लिफलेट द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। 2002 गुजरात दंगों के दौरान 40 वर्षीय बिल्किस बानो का जब सामूहिक बलात्कार किया गया था तब वे 5 महीने की गर्भवती थीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हिंसक हिंदू भीड़ ने उनके कई परिजनों समेत उनकी 3 साल की बेटी सालेहा का सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। 21 जनवरी 2008 को मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुजरात की बीजेपी सरकार ने 10 अगस्त 2022 को सामूहिक बलात्कार और हत्याओं के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों को रिहा करने का आदेश जारी किया था, जिसकी चौतरफा निंदा हुई थी। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ सुभाषिनी अली और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हलफनामा दिया है। गुजरात सरकार ने हलफनामे में दावा किया है कि कैदियों की रिहाई में पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस बीच 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई में मंगलवार को कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सभी दोषियों को फिर से जेल भेजा जाए।
ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के 2018 के फैसले को पलटते हुए अब यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग का कहना है, आज ऑस्ट्रेलियाई सरकार देश की लंबे समय से चली आ रही नीति को फिर से बहाल कर रही है और वो ये कि यरूशलम या बैतुल मुकद्दस एक ऐसा मुद्दा है जिसे इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच किसी भी शांति वार्ता के हिस्से के रूप में हल किया जाना चाहिए। उन्होंने बैतुल मुकद्दस के बारे में अपने देश की पूर्व सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर खेद जताते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया दो राज्यों के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। वांग का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तेल अवीव में ही रहेगी और कैनबरा दो राज्यों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें फिलिस्तीनियों को स्वतंत्र देश की स्थापना का अधिकार मिलना चाहिए। गौरतलब है कि अवैध ज़ायोनी शासन ने 1967 में इसराइल अरब युद्ध के दौरान बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया था और वो इस पूरे शहर को अपनी राजधानी बनाने का दावा करता है। हालांकि विश्व समुदाय उसके इस दावे को अवैध मानता है। ज़ायोनी प्रधानमंत्री यायर लपिद ने ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया है। मंगलवार को लपिद ने ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि यरूशलम इसराइल की राजधानी है और ये स्थिति कभी नहीं बदलेगी।
फिलिस्तीनी मीडिया का कहना है कि कुछ दिनों के भीतर फिलिस्तीनी जियालों ने वेस्ट बैंक और बैतुल मुकद्दस के इलाके में अपने हमलों से साबित कर दिया कि इसराइल की ये सोच बहुत बड़ी भूल और निराकोरापन है कि उसने गजा को किनारे करते हुए इन इलाकों को अपने लिए सुरक्षित बना लिया है। फिलिस्तीन न्यूज़ नेटवर्क ने एक रिपोर्ट में गुड्स और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं के हमलों का जायजा लेते हुए कहा कि हालिया दिनों वेस्ट बैंक में चेक पोस्टों और अन्य स्थानों पर इसराइली सैनिकों पर फिलिस्तीनी जियालों के हमलों में बड़ी तेजी देखने में आई है। स्थिति यह हो गई है कि इसराइली सैनिक फिलिस्तीनियों के हमलों के रेंज में नजर आते हैं और बार बार निशाना बना रहे हैं और हताहत व घायल हो रहे हैं। पिछले हफ्ते बैतुल मुकद्दस में शाफा शिविर के करीब इसराइली सेना के चेक पोस्ट पर फायरिंग हो गई और दूसरी फायरिंग नावलुस के करीब शावी शिमरोन इलाके में हुई। ये दोनों हमले 48 घंटे से कम अंतराल के भीतर हुई और इनमें कई तरफ से इसराइली सैनिकों को निशाना बनाया गया।
इसराइल में 5 साल से भी कम समय में आयोजित होने वाले 5वें आम चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है और ज़ायोनी नेताओं ने एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दी है। मंगलवार को 1 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए अपने प्रचार की शुरुआत करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री यायर लपिद ने पूर्व ज़ायोनी प्रधानमंत्री और अपने प्रतिद्वंदी बिन्यामिन नेतन्याहू पर जमकर हमला बोला और उन्हें ज़ायोनी शासन को बर्बाद करने वाला बताया। लपिद का कहना था कि अगर दक्षिणपंथी एक बार फिर सत्ता पर कब्जा कर लेंगे तो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो भी उनसे हो सकेगा वो करेंगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए ज़ायोनी शासन को बलि का बकरा भी बना सकते हैं और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। गौरतलब है कि नेतन्याहू अवैध ज़ायोनी शासन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले ज़ायोनी नेता हैं।
सऊदी अरब के सबसे शक्तिशाली अधिकारी मोहम्मद बिन सलमान के चचेरे भाई सऊदी शाला ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है कि किसी ने अगर सऊदी शाही व्यवस्था के अस्तित्व को चुनौती दी तो हम सभी शहादत और जिहाद के लिए तैयार हैं। हालिया दिनों तेल का प्रोडक्शन कम करने के ओपेक प्लस के फैसले को लेकर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच पहले से चला आ रहा विवाद खुलकर सामने आ गया है और अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकियां देना शुरू कर दिया है। तेल प्रोडक्शन बढ़ाने की अमेरिका की मांग को दरकिनार करते हुए सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस ने 2 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन कम करने का फैसला किया, जिस पर अमेरिका आग बबूला है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं लंदन में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच एकता कॉन्फ्रेंस, यूरोप में कार्यस्थल पर हिजाब पर प्रतिबंध और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेगी भारत की क्रिकेट टीम। तो सबसे पहले शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच एकता का विषय। लंदन में इस्लामिक सेंटर में शिया और सुन्नी मुसलमानों ने एकता कॉन्फ्रेंस आयोजित की। हालिया कुछ दिनों के दौरान शिया और सुन्नी मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कुछ साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने पूरे प्रयास झोंक दिए हैं। इसी को देखते हुए लंदन में शिया और सुन्नी मुसलमानों ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिम जादे की रिपोर्ट, साथी अहमद अब्बास की जबानी। लंदन की इस्लामिक सेंटर में दर्जनों शिया सुन्नी विचारकों और उलमा ने 24वीं इस्लामी एकता कॉन्फ्रेंस में शिया सुन्नी एकता को मजबूत करने और इस्लामोफोबिया की लहर पर काबू पाने के तरीकों और उपायों की समीक्षा की। एक सुन्नी स्कॉलर ने कहा कि वेस्ट में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मिशन पर काम हो रहा है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए शिया सुन्नी मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और इस अभिशप्त मिशन को नाकाम बनाने के लिए अपने सारे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्ला महदी हादवी तेहरानी ने एक वीडियो संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया दरअसल इस्लाम के खिलाफ मीडिया के जहरीले प्रोपेगंडे का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस्लामी शिक्षाओं, पैगम्बर की सीरत और उनके आदेशों पर अमल करके और ज़हानत से काम लेते हुए इस्लामोफोबिया को नाकाम बना सकते हैं। विचारकों और बुद्धिजीवियों का कहना था कि इस्लामोफोबिया को नाकाम बनाने के लिए जरूरी है कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बीच संवाद का सिलसिला शुरू किया जाए और इब्राहिमी धर्म के लोगों से बात की जाए। कॉन्फ्रेंस में शामिल बुजुर्ग इंटेलेक्चुअल का कहना था कि इस्लामोफोबिया नई चीज नहीं, लंबे अरसे से जारी है। उन्होंने कहा कि ये फोबिया फैलाने वालों के तीन लक्ष्य हैं। सबसे पहले तो वो पैगंबर को निशाना बनाते हैं, झूठी खबरें फैलाकर और जहरीला प्रोपेगंडा करके उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनका दूसरा निशाना हिजाब है, उन्होंने महिलाओं और बच्चियों के हिजाब को निशाना बनाया है और उन पर हमले कर रहे हैं। तीसरा निशाना पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है जिसके लिए वो चरमपंथ और आतंकवाद जैसे विषयों को बहाना बना रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मुसलमान तो खुद ही आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं और चढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में ताजा तरीन रिपोर्ट से पता चलता है कि एक साल के भीतर धर्म के आधार पर नफरत में 37% की वृद्धि हो गई है और हालात खतरनाक हैं।
Absolutely, Islamophobia is an...
एक अन्य इंटेलेक्चुअल का कहना था कि वेस्टर्न यूरोप में इस्लामोफोबिया एक हकीकत है। बहुत सोची समझी साजिश के तहत कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस्लाम और मुसलमानों से दूर किया जाए। इस साजिश में राजनीतिक दल और कुछ थिंक टैंक शामिल हैं जो जातिवादी रुझान रखते हैं। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
और अब चलते हैं यूरोप।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
यूरोप
यूरोपीय संघ की अदालत ने कार्यस्थल पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को कानूनी घोषित कर दिया है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी।
यूरोपीय संघ की अदालत ने कार्यस्थल पर हिजाब न पहनने को कानूनी घोषित कर दिया है। इसी प्रकार यूरोपीय संघ की अदालत ने ऐलान किया है कि यूरोपीय कंपनियां स्कार्फ पहनने की अनुमति दे सकती हैं, इस शर्त के साथ कि पूरा चेहरा न ढका हो। यूरोपीय अदालत ने अपने फैसले का औचित्य दर्शाते हुए कहा है कि इस तरह से कार्यालय में भेदभाव नहीं होगा। यूरोपीय संघ की अदालत का फैसला एक मुसलमान महिला के विषय से संबंधित है। एक मुसलमान महिला ने बेल्जियम की कंपनी में 6 हफ्ते तक काम सीखने के लिए आवेदन दिया था। कंपनी ने उसके आवेदन के जवाब में कहा था कि वो स्कार्फ नहीं पहन सकती। इसी प्रकार कंपनी ने कहा था कि एक निष्पक्ष कानून है, वो इस अर्थ में कि काम करने के स्थान पर सर ढकने के लिए कोई परिधान नहीं पहन सकती, चाहे वो टोपी हो, स्कार्फ हो या कोई अन्य वस्त्र। साथ ही यूरोप की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यूरोपीय संघ में मौजूद कंपनियां विशेष हालात में स्कार्फ पहनने से भी मना कर सकती हैं। इसी तरह का कानून वर्षों से जर्मनी में भी विवाद का विषय रहा है। अलबत्ता ये उन महिला शिक्षकों से संबंधित है जो जर्मनी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाती हैं। फ्रांस ने भी वर्ष 2004 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा रखा है। सवाल ये पैदा होता है कि पश्चिम और यूरोपीय देश स्वयं को आज़ादी और अभिव्यक्त का पालना कहते हैं, यहाँ पर आज़ादी कहाँ चली जाती है? अगर पश्चिमी व यूरोपीय देश वास्तव में आज़ादी के पक्षधर हैं, तो अगर मुसलमान महिला या लड़की हिजाब करना चाहती है तो उसे भी हिजाब करने की पूरी आज़ादी व अनुमति होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो या कार्यस्थल या कोई और जगह। इन देशों में जिस तरह हिजाब न करने वाली महिलाओं और लड़कियों को पूरी आज़ादी है, उसी तरह जो लड़कियाँ और महिलाएँ हिजाब करना चाहती हैं उन्हें भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए, जिस तरह खाने पीने की पूरी आज़ादी है। ये कौन सी आज़ादी है कि जो लड़कियां और महिलाएं बिना हिजाब के रहना चाहती हैं उन्हें ऐसा करने की पूरी आज़ादी है, परंतु जो महिलाएं और लड़कियां हिजाब करना चाहती हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती? यूरोपीय संघ की अदालत का ये फैसला आज़ादी से पूर्ण रूप से विरोधाभास रखता है। इसी तरह पश्चिमी व यूरोपीय देश ये कहते हैं कि हर इंसान को बोलने की पूरी आज़ादी है। इन देशों में अगर ईश्वरीय दूतों का अपमान किया जाता है या ईश्वरीय ग्रंथ पवित्र कुरान का अपमान व अनादर किया जाता है, तो इन देशों के बुद्धिजीवी बड़ी निर्लज्जता से कहते हैं कि हर इंसान को अभिव्यक्त की पूर्ण स्वतंत्रता है। मगर जैसे ही इसराइल और होलोकॉस्ट का नाम आता है, इन देशों की सरकारों और बुद्धिजीवियों के कान खड़े हो जाते हैं। बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि न केवल दाल में काला है बल्कि पूरी दाल ही काली है। पश्चिमी व यूरोपीय देशों ने होलोकॉस्ट के बारे में सवाल करने पर जो प्रतिबंध लगा रखा है उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
और अब चलते हैं भारत। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि 2023 में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के मुकाबलों में भारतीय टीम शिरकत नहीं करेगी। उधर सौरव गांगुली अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अध्यक्ष पद गंवा चुके हैं। उनकी जगह 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी को आधिकारिक रूप से बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय टीम एशिया कप का मुकाबला पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे न्यूट्रल स्थान पर खेलने के लिए तैयार है। ज्ञात रहे कि वर्ष 2023 में एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होने वाला है। पहले ये कहा गया था कि भारतीय टीम 2023 में एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान जा सकती है। आज मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक बैठक के बाद BCCI ने यह फैसला किया। बीसीसीआई अगले साल होने वाले टूर्नामेंट को स्थानांतरित करने पर विचार करेगा। बीसीसीआई के सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि एशिया कप टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल स्थान पर खेले जाने की पेशकश की जाएगी और हमने फैसला किया है कि भारतीय टीम ये टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों ने वर्ष 2012-13 के बाद से द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली है। इसी वर्ष खेले गए एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें दो बार आमने सामने हुई थी, एक मैच भारत जीता था और एक पाकिस्तान। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मुकाबला करने वाली है। 23 अक्टूबर को मेलबोर्न में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। मैच चाहे कहीं भी हो, लेकिन क्रिकेट प्रेमी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उधर 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे रॉजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वे बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं जिन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया है। 67 वर्षीय रॉजर बिन्नी को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में इसका अध्यक्ष चुने जाने पर अंतिम मोहर लगा दी गई। वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। रॉजर बिन्नी ने भारत के लिए 27 टेस्ट और 72 वनडे मैच खेले। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम कुरानी किस्से।
قرآن قصے۔
دوستو ساپتاہک کاریکرم قرآن قصے کے کرنے کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد میری کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو آج کے کاریکرم میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پوتر قرآن کے سورہ فرقان کی 27 سے لے کر 29 تک کی آیتیں کس موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ عقبہ نام کا ایک ویکتی تھا جو خوش اخلاق اور ملنسار تھا اور سب سے اچھا سمبند رکھتا تھا اور کسی کو دکھی نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی ویکتی اس سے ناراض ہو جاتا تھا تو وہ دوبارہ اسے راضی کرنے کا پریاس کرتا تھا۔ اسی پرکار وہ ہمیشہ اپنے نکٹ سمبندھیوں کے یہاں آیا جایا کرتا تھا۔ وہ آتیتھ ستکار میں مشہور تھا۔ جب کوئی تہوار آتا تھا تو وہ اپنے نکٹ سمبندھیوں کو اپنے گھر پر آمنترت کرتا اور انہیں کھانا کھلاتا تھا اور ان کا آتیتھ ستکار کرتا تھا۔ جب وہ یاترا سے واپس آتا تھا تو سبھی اس کے سواگت کے لیے جاتے اور اس کے گھر تک اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یدیپی ابھی اس نے ایشوریہ دھرم اسلام سویکار نہیں کیا تھا اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو نہیں توڑا تھا اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔
ایک بار جب عقبہ یاترا سے واپس آیا تو اس نے کافی بڑے پیمانے پر مہمانی کا پرابندھ کیا اور بہت سے لوگوں وشیش کر پیغمبر اسلام کو آمنترت کیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا مگر یہ کہ تو ایک آشیرواد کو قبول کر لے اور میری پیغمبری کی گواہی دے، یعنی اللہ کو ایک مان لے اور اس بات کی گواہی دے کہ میں ایشور کا دوت ہوں، اور اسلام دھرم سویکار کر لے تاکہ سورگ اور ایشوری کرپا کے دوار تیرے لیے کھل جائیں۔
عقبہ نے پیغمبر اسلام سے کھانے کے لیے کہا، پرنتو پیغمبر اسلام نے دوبارہ اپنی بات دہرائی اور کہا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا مگر یہ کہ تو ایک ایشور ہونے اور میری پیغمبری کی گواہی دے۔ عقبہ نے پیغمبر اسلام کی بات سویکار کر لی اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایشور ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔
دوستو جب مہمانی سماپت ہو گئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو یہ بات بھی پھیل گئی کہ عقبہ نے اسلام سویکار کر لیا۔ مسلمانوں نے عقبہ کے کارے کی سراہنا کی اور اس کے مقابلے میں کافر اور انیکوے شروادی ناراض ہو گئے اور کچھ نے عقبہ کو دھمکی بھی دی۔ ابن ابی خلف نام کا ایک انیکوے شروادی تھا، جب اسے اس بات کا پتہ چلا تو اسے سب سے ادھک حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ پیغمبر اسلام سے دویش رکھتا تھا اور اس نے دیکھا کہ میرا پرانا دوست بھی مسلمان ہو گیا۔ ابن ابی خلف کو عقبہ کا نکٹ دوست سمجھا جاتا تھا، ادھکار سمے میں دونوں ساتھ رہتے تھے، دونوں میں بڑی گہری اور دانتوں کاٹی دوستی تھی۔
ابن خلف جانتا تھا کہ عقبہ کے سامنے ایسے حالات آ گئے تھے جس کی وجہ سے اس نے اسلام سویکار کر لیا۔ اس آدھار پر وہ اس بات سے آشوست تھا کہ دیر سویر وہ اپنے پرانے دھرم پر واپس آ جائے گا۔ اتھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دوڑتے ہوئے عقبہ کے گھر آ گیا۔ جب عقبہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابن ابی خلف بہت کردید ہے۔ اس نے عقبہ کو سلام کیے بنا اس پر چلایا اور کہا، تم نے اسلام سویکار کر لیا ہے، اپنے پروجوں کے دھرم سے باہر نکل گیا ہے، تو نے بوتوں و مورتیوں کا سمان چھوڑ دیا ہے، تم نے مجھ سے نہ پوچھا اور نہ مشورہ کیا اور محمد کا دھرم سویکار کر لیے، جبکہ ہم دونوں میں طے یہ تھا کہ ہم دونوں ہر حالت میں ایک ساتھ رہیں گے، اس لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اور اگر تم ابھی اپنے پرانے دھرم پر واپس نہیں آئے تو پھر مجھے کبھی نہیں دیکھو گے۔
دوستو اس پر عقبہ مسکرایا اور آگے بڑھ کر اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بہتر ہے کہ تم اپنے کرودھ پر نینترن کرو اور ہم دونوں آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد عقبہ نے کہا کہ میرے پریے دوست، محمد سے میرا پاریوارک سمبندھ ہے، تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو، میں ایک مہمان کو بھی ناراض نہیں کرتا۔ اس مہمانی میں حضرت محمد کی اپستھتی سے مجھے شرم آئی اور مجبور ہو کر میں نے اس کے دھرم کو سویکار کر لیا اور میں نے ان کی پیغمبری کی گواہی دی۔ جان لو کہ واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے، اسی وقت میں اپنے پرانے دھرم پر پلٹتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں کے بیچ انہیں جھٹلاؤں گا اور اپمانت کروں گا۔
کھیت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سوبھاگیہ عقبہ کو پراپت ہوا تھا وہ دنیا کی دوستی کے کارن سماپت ہو گیا اور وہ اسلام پر باقی نہ رہ سکا۔ اس نے اپنے دوست کی خوشی کے لیے اپنے پلو کو بگاڑ لیا اور اپنی عجیب و غریب حلیہ بنا کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گیا۔ پیغمبر اسلام اس سمے نماز پڑھ رہے تھے۔ پیغمبر اسلام کی نماز ختم ہونے سے پہلے ہی عقبہ نے انہیں سمبودھت کیا اور انہیں برا بھلا کہا۔ اس نے پیغمبر اسلام سے اپنی دشمنی ثابت کرنے کے لیے ان پر تھوکا اور اپنی گواہی واپس لے لی۔ کئی دن کے بعد وہ دوبارہ خانہ کعبہ یا مسجد الحرام میں گیا۔ اس وقت ابو جہل کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہیں بیٹھا تھا۔ اس سمے اس نے دوبارہ پیغمبر اسلام کو وہاں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا سجدہ کچھ لمبا ہو گیا ہے۔ ابو جہل نے پاس میں بیٹھے لوگوں کو سمبودھت کر کے کہا، تم میں سے کون آج ذبح کیے گئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر محمد کے سر پر ڈالے گا؟ عقبہ نے یہ بات سویکار کر لی۔
دوستو عقبہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام سے کوئی شردھا و لگاؤ نہیں رکھتا ہے۔ وہ تیزی سے مکہ کے اس استان کی اور گیا جہاں اونٹ کی اوجھڑی پھینکی ہوئی تھی۔ اوجڑی کے اندر کی گندگی اس نے پیغمبر اسلام کے پاون سر پر اور دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دیا۔ عقبہ نے اپنے دوستوں کی چاپلوسی کے لیے اپنے برے کاریوں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک دن قریش کے کچھ گنمانیہ لوگوں نے پیغمبر اسلام پر حملہ کیا اور اسی بیچ عقبہ نے پیغمبر اسلام کی گردن میں ایک کپڑا لپیٹ دیا اور پوری طاقت سے اسے کھینچا، اس پرکار سے کہ پیغمبر اسلام کی جان خطرے میں پڑ گئی اور لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا۔
यद्यपि पैगंबर इस्लाम का स्वाभाविक अधिकार ये था कि वो अकबा को दंडित करते, परंतु उन्होंने केवल इतना फरमाया, जब मक्का से बाहर जाओगे तब हक के प्रतिरोध की तलवार से मारे जाओगे।
اسلام نے مکہ سے مدینہ پلائن کیا اور کچھ ہی سمے گزرا تھا کہ جنگ بدر ہو گئی اور اس جنگ میں پیغمبر اسلام کی بھوشوانی بخارک ہو گئی اور عقبہ مارا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب پوتر قرآن کے سورہ فرقان کی 27 سے لے کر 29 تک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیتوں میں مہان ایشور کہتا ہے، اس دن کو یاد کرو جب اتیاچاری حسرت سے اپنے ہاتھ کو دانتوں تلے دبائے گا اور اسے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے پیغمبر اسلام کے راستے کا چین کیا ہوتا، وائے اور دھکار ہو مجھ پر، کاش میں نے امو کے وقت سے دوستی نہ کی ہوتی، اس نے مجھے گمراہ کیا جبکہ ستیہ مجھ تک پہنچ چکا تھا اور شیطان ہمیشہ انسان کو اپمانت کرنے والا رہا ہے۔
دوستو، پویتر قرآن کی نایتوں سے جو سیکھ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے گمراہ دوستوں کی وجہ سے نرک میں جائیں گے۔ پرلے کے دن نرک میں جانے والے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ کاش فلاں ویکتی سے دوستی نہ کرتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ گمراہ لوگ خود تو نرک میں جائیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی لے جائیں گے۔ انسان کو دوستوں کے چین میں بڑی ساودھانی سے کام لینا چاہیے۔ بری سنگت برے انجام کی بھومکا ہو سکتی ہے۔ سانپ کے کاٹنے سے انسان مر سکتا ہے، پرنتو برا و گمراہ دوست انسان کو نرک میں پہنچا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہر ایک سے دوستی کرنے کو کمال سمجھتے ہیں، پرنتو انہیں گیات نہیں ہے کہ اگر برے انسان سے دوستی ہو گئی تو وہ انہیں نرک کا ایندھن بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے روایتوں میں بل دے کر کہا گیا ہے کہ پہلے انسان کو پرکھو پھر دوستی کرو، مگر ہمارے سماج میں ٹھیک اس کا الٹا ہوتا ہے، یعنی لوگ پہلے دوستی کرتے ہیں اور جب غلط دوست اپنے دکھاوٹی دوست کو ڈنس لیتا ہے تو اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے دوری بنا لیتے ہیں۔
اس پرکار کی دوستی کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ واسطہ میں دوستی کے لائق ہوتے ہیں ان سے بھی انسان دوستی کرنے سے ڈرتا اور ان سے دوستی نہیں کرتا ہے، حالانکہ اچھے انسان کے ادھک دوست ہوتے ہیں اور روایتوں میں کہا گیا ہے کہ ادھک دوست انسان کی خوشبختیوں میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انسان کے ادھک دوست ہوتے ہیں بہت سے اوسروں پر اپنے دوست کی سمسیا وہ خود حل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دوست کی سمسیا کو اپنی سمسیا سمجھتے ہیں۔
یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی انسان کا ویکتتو آپ کے لیے سندگھ ہو جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا، تو اسی حالت میں کیا کریں؟ اس پرکار کی سمسیا کا سمادھان حضرت علی علیہ السلام کے اس کتھن کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس پرکار کی استھتی میں سندگھ ویکتی کے دوستوں کو دیکھو، اگر اس کے دوست اچھے ہیں اور ایشور کو مانتے ہیں تو سمجھو کہ وہ انسان بھی صحیح اور اچھا ہے، اور اگر دوست صحیح اور اچھے نہیں ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ بھی صحیح و اچھا انسان نہیں ہے۔ کتنی عجیب و روچک بات ہے کہ پوتر قرآن میں اچھے و مومن دوستوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا گیا ہے۔ اچھا دوست دکھ سکھ میں اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے، پر جو دکھاوٹی دوست ہوتے ہیں وہ کٹھن سمے آنے پر انسان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برے دوست سے دوست کا نہ ہونا بہتر ہے۔ اچھا دوست نہ کیول دنیا میں کام آتا ہے بلکہ پرلوک میں بھی کام آئے گا۔ اچھا دوست کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ غداری و مکاری نہیں کرتا ہے، وہ اپنے دوست کی ترقی و بھلائی چاہتا ہے اور اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے پریاس کرتا ہے۔ اچھا دوست نہ تو اپنے دوست کی برائی کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں سے اپنے دوست کی برائی سننا پسند کرتا ہے۔ مہان ایشور پوتر قرآن میں کہتا ہے کہ ہے ایمان لانے والوں، ہمارے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ سارانش، اچھا انسان کبھی بھی گمراہ اور برے انسان سے دوستی نہیں کرے گا۔ تو دوستو، آج کا کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम जैविक युद्ध का खतरा।
जैविक युद्ध का खतरा।
दोस्तों, जैविक युद्ध का खतरा कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हाजिर है स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम रासायनिक हथियारों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की चर्चा करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक और जैविक हथियारों के निषेध के लिए किए गए समझौतों में से रासायनिक हथियार कन्वेंशन या CWC है। इस कन्वेंशन के मुताबिक रासायनिक हथियारों का विकास और उत्पादन निषेध है और मौजूदा रासायनिक हथियारों के भंडारों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। CWC को अप्रैल 1997 में लागू किया गया। इस संधि पर 193 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में रासायनिक हथियार रखने के बावजूद ज़ायोनी शासन ने और मिस्र तथा दक्षिणी सूडान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए।
रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर किए गए अध्ययनों के अनुसार 2018 तक कई देशों की सरकारों के सहयोग से विनाशकारी रासायनिक भंडारों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट किया जा चुका है, लेकिन कुछ रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल हथियारों के अलावा दूसरे उत्पादों में भी किया जाता है, इसलिए उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता या उसे उत्पादन चक्र से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। उदाहरण स्वरूप फॉस्जिन और क्लोरीन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें विनाशकारी सैन्य लक्ष्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि उद्योग के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का बजट 2020 में लगभग 71 मिलियन यूरो था और इसमें दुनिया की लगभग 98% आबादी शामिल है।
इस कन्वेंशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने वाले रासायनिक हथियार निषेध संगठन का कहना है कि दुनिया में विनाशकारी रासायनिक हथियारों के 98% से अधिक भंडार को समाप्त कर दिया गया है। इस संगठन ने रासायनिक हथियारों के उत्पादन में सक्षम 97 चिन्हित ठिकानों में से 74 ठिकानों को नष्ट कर दिया है और 23 ठिकानों के संचालन को शांतिपूर्ण गतिविधियों में बदल दिया है। नवीनतम जानकारी के अनुसार 119 देशों ने कन्वेंशन के कार्यान्वयन को अपने राष्ट्रीय कानूनों में जगह दे दी है।
रासायनिक हथियारों के निषेध पर अब तक 4 समीक्षा सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इन 4 सम्मेलनों में से 3 सम्मेलनों को कन्वेंशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है, लेकिन चौथा सम्मेलन एक चुनौतीपूर्ण समीक्षा पर आधारित था। यह सम्मेलन नवंबर 2018 में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में सीरिया, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम में रासायनिक हथियारों को लेकर सदस्य देशों के बीच गंभीर असहमति रही। चौथे सम्मेलन के चुनौतीपूर्ण होने का एक कारण यह था कि पश्चिमी देशों ने दाइश द्वारा सीरिया में रासायनिक हथियारों के प्रयोग की स्पष्ट रूप से अनदेखी करते हुए सीरिया की वैध सरकार के खिलाफ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का झूठा आरोप मढ़ने पर प्रयास किया। चौथे सम्मेलन में CWC कन्वेंशन की उपलब्धियों और कुछ रासायनिक हथियारों के फिर से उत्पादन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
चौथे कन्वेंशन के सत्यापन को मजबूती प्रदान करने, सदस्य देशों में कन्वेंशन के राष्ट्रीय कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, रासायनिक हथियारों के निर्माताओं के प्रायोजकों की पहचान करने, रासायनिक हथियारों के मुकाबले में वैश्विक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चौथे सम्मेलन की विफलता का मुख्य कारण अमरीका का विरोध और उसके सहयोगियों का ढुलमुल रवैया था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य के रूप में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को सफलतापूर्वक लागू करने का या नहीं करने में अमेरिका की भूमिका अहम है। अमेरिका सरकार का टालमटोल वाला रवैया किसी भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है। रासायनिक हथियारों तक पहुंच रखने वाले आतंकवादी गुटों ने विश्व समुदाय के सामने एक गंभीर चुनौती पेश की है। चौथे सम्मेलन में इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया था, लेकिन अमेरिका ने इस सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज का समर्थन नहीं किया, जिससे यह कयास लगाया गया कि कहीं अमेरिका दाइश जैसे आतंकवादी गुटों का समर्थन तो नहीं कर रहा है जिसकी पहुँच रासायनिक हथियारों तक है।
पूरे मानव समाज के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर देने वाले मुद्दों में से एक जैविक हथियार है। इस समस्या के अलग अलग पहलुओं की समीक्षा पर आधारित है कार्यक्रम जैविक युद्ध का खतरा। हर हफ्ते मंगलवार को
लेबनानी सेना के रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ अमीन हतीत ज़ैनी शासन तुर्की और अमेरिका द्वारा सीरियाई संकट के दौरान दमिश्क सरकार पर दबाव डालने के लिए दाइश के इस्तेमाल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अमेरिका ने दाइश को जन्म दिया और उसका इराक में अपनी वापसी और सीरिया को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया। सीरिया में दाइश का मुकाबला किया और अधिकांश इलाकों में उसे पराजित कर दिया। उसके बाद अमेरिका को समझ में आया कि सीरिया की शक्तिशाली सरकार को हराना संभव नहीं है, इसीलिए उसने अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने सीरिया में दाइश द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की अनदेखी की और इस आतंकी गुट को बचाने का प्रयास किया ताकि सीरियाई तेल की लूटमार जारी रख सके, लेकिन प्रतिरोधी मोर्चे ने दाइश को बुरी तरह हरा दिया।
दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में हम रासायनिक हथियारों पर निषेध के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मुद्दे की चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून सार्वभौमिक नियमों का एक समूह है जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता और इसी तरह उन्हें लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी मनुष्य के संबंध में सभी सरकारों के लिए इन अधिकारों का कार्यान्वयन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर के प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को संरक्षण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून युद्ध के नियमों से भी संबंधित है जिसमें हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रेमी कानून दोनों ही रासायनिक और जैविक हथियारों के उत्पादन और इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं।
मानवाधिकार चार्टर के अनुसार वर्तमान पीढ़ी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वो अपनी गतिविधियों के सुरक्षित होने को लेकर आश्वस्त रहे और उसे ये भी जानने की ज़रूरत है कि उसकी गतिविधियां आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करेंगी। पर्यावरण, विकास, मानव जीनोम, सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा जैसे मुद्दे नई पीढ़ी के लिए मानवाधिकारों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र ने 1990 के बाद से मानवाधिकार के नज़रिए के जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौते का समर्थन भी इसी दृष्टिकोण के अनुसार है।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के आधार पर पर्यावरण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर नियमों के अनुसार प्रतिबद्धताएं और मुद्दे जैसे कि मानव स्वास्थ्य की रक्षा, पर्यावरण का अधिकार, स्वस्थ जीवन का अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के अधिकार कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जो सभी मनुष्यों और सरकारों का सामान्य कर्तव्य है। इन मामलों में किसी भी तरह का उल्लंघन वास्तव में गैरकानूनी है और इससे मानवाधिकारों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। इस दृष्टिकोण से रासायनिक और जैविक हथियारों का किसी भी स्तर पर उत्पादन, भंडारण और प्रयोग भावी पीढ़ियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि जैविक हथियार सामूहिक विनाश के खतरनाक हथियार हैं जो प्रकृति के क्रम को बाधित करते हैं और इससे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा पैदा होता है। इसी प्रकार इससे आने वाली पीढ़ियां अपने दीर्घकालिक अधिकारों से वंचित हो जाती है। इसलिए सरकारों को जैविक और रासायनिक हथियारों के निषेध पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के तहत अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। श्रोताओं, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Thank you.